ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए एकीकृत पेंशन योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
शिशिर सिन्हा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद
शिशिर जी। केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा बढ़ाते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें पेंशन की एक गारंटी दी गई है। इस प्रणाली और इस बदलाव के बारे में आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दें, खासतौर पे ओपीएस से ये किस तरह से अलग है, लोग इस बात को ज्यादा समझने में दिलचस्प हैं।
देखिए, तो पेंशन की तीन व्यवस्था आपके सामने है। एक है जिसको हम लोग कहते हैं ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन व्यवस्था, दूसरा है एनपीएस जिसका पहले नाम था न्यू पेंशन स्कीम जो बाद में हो गया नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस, और तीसरा यूनिफाइड पेंशन सिस्टम जिसको हम लोग एकीकृत पेंशन व्यवस्था जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। अब यहां पर एक बात हमारे श्रोताओं को ये समझना होगा कि 31 दिसंबर 2003 तक जो लोग भी सरकारी नौकरी में आए थे उनके लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था थी। पुरानी पेंशन व्यवस्था में क्या था, पुरानी पेंशन व्यवस्था को हम लोग कहते हैं डिफाइंड बेनिफिट स्कीम। डिफाइंड बेनिफिट स्कीम का मतलब क्या होता है कि आप जब सेवानिवृत्त होंगे तो आपको आखिरी वेतन का 50% पेंशन के तौर पे मिलेगा। अगर आपके बाद जो आपके पत्नी, यदि आप महिला की बात करें उनके पति की बात है, या दिव्यांग बच्चे को हो, तो उसको जो मूल कर्मचारी है उसके पेंशन का आधा मिलेगा यानी कि 50% मिलेगा। यह है पुरानी पेंशन व्यवस्था जिसको हम लोग डिफाइंड बेनिफिट स्कीम कहते हैं। अब इसमें बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उस समय में सरकार में इस बात को महसूस किया गया कि पेंशन पर खर्च लगातार बढ़ रहा है, इस पर अगर नियंत्रण करना है तो हमें अंशदान वाली पेंशन व्यवस्था को लाना होगा। तो डिफाइंड बेनिफिट से हम लोग आगे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पे, यानी कि आपको एक निश्चित रकम जमा करनी है। और इसी के साथ हुआ कि सेना को छोड़ करके बाकी जो भी सरकारी नौकरी में आते हैं 1 जनवरी 2004 या उसके बाद, उनके लिए नई पेंशन व्यवस्था होगी जिसमें कर्मचारी को मूल और महंगाई भत्ते का जो योग बनता है उसका 10% योगदान करना होगा और उतना ही योगदान सरकार भी करेगी। बाद में ये योगदान 14% कर दिया गया। इसमें कोई गारंटीड पेंशन नहीं था और जिसको लेकर के हमेशा से ये विवाद होता रहा कि इतने सालों की सरकारी नौकरी के बाद हमारे पास भविष्य की सुरक्षा क्या है, क्योंकि वो पैसा जो आपका कहीं भी लगा और आपको पर्याप्त उसका फंड नहीं मिल पाया तो आपके लिए भविष्य दिक्कत की बात हो जाएगी। तो इस पर एक समिति बनाई गई पिछले साल बजट में, जिसको टीवी सोमनाथन कमेटी जो कि अभी कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट है, और उनकी सिफारिशों के आधार पर एकीकृत पेंशन योजना लाई गई जिसमें तीन खास पहलू हैं। पहला, आपको एश्योर्ड पेंशन है। दूसरा, मिनिमम फैमिली पेंशन है। और तीसरा, मिनिमम एश्योर्ड पेंशन है। ये तीन का मतलब क्या है, पहले वाले में जो कर्मचारी 25 साल या उससे ज्यादा की नौकरी किए हैं उनके लिए आखिरी जो उनका साल है कार्य का उसके 12 महीनों में वेतन का जो औसत बनेगा उसका 50% पेंशन मिलेगा। दूसरा, फैमिली पेंशन में हो गया कि उस पेंशन का 60% जो उस मूल कर्मचारी को मिल रहा था वो परिवार को मिलेगा, और परिवार की परिभाषा जैसे मैंने आपसे कहा पति पत्नी या दिव्यांग बच्चे हैं। और तीसरा ये है कि 10 साल की जिसकी नौकरी रही है उनको ₹10,000 मिनिमम एश्योर्ड पेंशन होगा। तो ये आपकी एकीकृत योजना है। एक ही बात को आपको ध्यान रखना है कि एनपीएस और यूपीएस दोनों ही डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, यूपीएस में अब डिफाइंड बेनिफिट भी आ गया।
शिशिर जी, अभी आप एकीकृत पेंशन योजना के बारे में इतनी बातें बता रहे हैं, जो दो मूल घटक हैं निश्चित अंशदान और निश्चित लाभ, ये खासतौर पे एक बड़े बदलाव की ओर संकेत देता है जिसमें लोगों को बचत की ओर प्रोत्साहित करने के लिए शायद बढ़ावा देने की बात है। ये
आपके लिए क्या होता है कि बचत आप स्वेच्छा से करते हैं या बचत आप मजबूरी में करते हैं या दबाव में करते हैं? जब आप स्वेच्छा से करते हैं तो उसके पीछे आपकी बहुत ज्यादा सोच नहीं होती है, लेकिन जब आप दबाव में करते हैं तो उसके पीछे एक सोच होती है कि इसका मुझे लाभ क्या मिलेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि जो एकीकृत पेंशन योजना या नेशनल पेंशन सिस्टम में जो आप पैसा लगाते हैं वो एक दबाव की बात होती है, वो आपके पूरे कार्य के लिए जिसको कहते हैं ना कि जो आपके और सरकार के बीच में जो समझौता है या सहमति जिन मुद्दों पर बनी उसमें से एक ये भी है कि आप अपने वेतन का इतना हिस्सा योगदान करेंगे और उसके आधार पर आप पेंशन के हकदार होंगे। ये है। अब इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में 10% कर्मचारी का, 14% सरकार का, ये 24% का जो कॉर्पस बना इसमें आप 60 वर्ष की उम्र में जब आप रिटायर करते हैं तो उसमें से 60% एकमुश्त आप निकाल सकते हैं, और 40% के जरिए एक पेंशन प्लान खरीदा जाता है जिसके आधार पर आपको पेंशन मिलता है। लोगों की शिकायत क्या थी? लोगों की शिकायत ये थी कि इतना पैसा नहीं मिलता जिससे कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। अब उसमें इसी बात को सुधार करते हुए क्या कहा गया कि आपको 50% जो आपके आखिरी कार्यकाल के साल का जो वेतन है उतना आपको मिलेगा, यानी कि आपको एश्योर्ड पेंशन कर दिया गया। लेकिन कंट्रीब्यूशन जो 10% कर्मचारी का था उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। हाँ, सरकार का जो योगदान था वो 14 से बढ़ा करके 18.5 कर दिया गया। तो अभी ये बात जो है वो केवल केंद्र सरकार के लिए है। और आपको ये भी जानकारी दी जाती है कि महाराष्ट्र सरकार पहली राज्य सरकार है जिसने एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने का फैसला किया है। वो भी उसी आर्किटेक्चर पे काम करेंगे जो आर्किटेक्चर केंद्र सरकार का।
अभी आपने महाराष्ट्र सरकार की बात की, तो मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया है उन्होंने ये कहा है कि यूपीएस इस वर्ष मार्च से प्रभावी हो जाएगी।
महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भले ही 1 अप्रैल 2025 से करे, हम उसके पहले ही हम इसी वर्ष से जो है उसका फायदा दे सकते हैं। और महाराष्ट्र के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि उनकी वित्तीय स्थिति काफी बेहतर है दूसरे राज्यों की तुलना में, उनका बजट काफी बेहतर है, तो इसलिए उनके लिए बहुत ज्यादा एक कहा जाना कि वित्तीय परेशानी या वित्तीय संकट जैसी स्थिति नहीं आने वाली है। तो राजनीतिक फायदे की भी बात है, कोई भी सरकार चाहे
लोगों
का बिल्कुल फायदा ले और उसी के आधार पर देखते हुए ये फैसला किया गया।
शिशिर जी, एक मन में सवाल ये आ रहा है कि ये जो नई पहल सरकार ने अभी की है तो क्या ये पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस में अगर मूलभूत कमियां रही होंगी तो क्या ये उनको दूर करने का प्रयास करती है? क्योंकि अगर इस योजना को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये पेंशन देनदारियों को करदाताओं की भावी पीढ़ियों पर स्थानांतरित करती है, यानी कि आगे की भविष्य की बात करते हैं।
एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ओपीएस में अंशदान की कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी कि पूरा का पूरा जो एक पेंशन की जो जिम्मेदारी है, देनदारी जो है, वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के ऊपर है, उनके बजट के ऊपर, बजट में शामिल होता था। नेशनल पेंशन सिस्टम में अंशदान की व्यवस्था शुरू की गई, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में भी अंशदान की व्यवस्था, यानी कि पुरानी पेंशन योजना से एक बड़ा अंतर यह हो गया है कि यहां पर अंशदान की व्यवस्था है। दूसरा यह है कि पुरानी पेंशन योजना के बराबर ही, यानी कि वहां पर भी आखिरी वेतन का 50% और यहां पर भी आखिरी वेतन का 50%, तो दोनों ही हो गया। अब यहां पर एक तकनीकी बात मैं आपके श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूंगा कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है जिसमें कर्मचारी 10% और सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकार की हो जो 14% होता था, जो 24% पैसा था उसको कहीं ना कहीं निवेश किया जाता था। आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प जिसको कहते थे डिफॉल्ट, यानी कि आपने कहा नहीं जी मुझे कोई फैसला नहीं करना है, आप तय कर लो, तो उसमें आपके पैसे को 85% जो आपका कॉर्पस, आपका जो भी पैसा आता है वो 85% बॉन्ड में और 15% तक शेयरों में, ये डिफॉल्ट ऑप्शन था। दूसरा क्या था कि आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, बिल्कुल जोखिम नहीं उठाना चाहते, तो आप कहेंगे पूरा का पूरा पैसा 100% पैसा जो है मेरे सरकारी बॉन्ड में लगा दो। आप थोड़ा सा जोखिम उठाना चाहते हैं तो आपको 2 विकल्प दिए गए जिसको हम लोग कहते हैं लाइफ साइकिल 25, लाइफ साइकिल 50। इसका मतलब क्या हुआ कि 25% तक पैसा शेयरों में आप लगा दें और दूसरे विकल्प में 50% तक शेयरों में लगा दें। तो मोटा मोटी ये हुआ कि 24% जो पैसे से कॉर्पस बना वो इन अलग अलग विकल्पों में इसका निवेश किया गया। अब क्या होगा यूनिफाइड पेंशन में, आपका जो 10% है और सरकार का 10%, सरकार 18.5% कर रही लेकिन मैं पहले 10 लूंगा, तो 10 और 10 20 हो गए, ये कहां लगेगा ये आप तय करेंगे, यानी कि कर्मचारी तय करेगा। आपके पास विकल्प क्या होंगे, वो डिफॉल्ट ऑप्शन होगा या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का होगा या फिर आप शेयरों में 25% या आप शेयरों में 50%। आप इसमें बदलाव भी कर सकते हैं अपने लाइफ साइकिल में। बाकी जो 8.5% है वो कहां लगेगा ये फैसला सरकार करेगी, लेकिन अंत में ये होगा कि आपका जो कॉर्पस बना उससे ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी कि आखिरी साल के 12 महीने का 50% आपको पेंशन मिल सके। तो अगर आपने मान लीजिए कि शेयरों में पैसा लगा दिया, और मैं बहुत ही काल्पनिक स्थिति की बात कर रहा हूं कि आपका पैसा कम हो गया, वहां पे घाटा हो गया, तो वो जो अंतर है उस अंतर को पाटने का काम सरकार करेगी ताकि आपके लिए 50% आपके 12 महीने के वेतन के आधे के बराबर आपको मिल सके। तो ये इस नई पेंशन योजना का ये सबसे बड़ा मूल बात,
यानी कि इसमें प्रोत्साहन भी दिया गया है कि आप प्रोत्साहित होइए बचत करने के लिए, निवेश करने के लिए। बाकी हम तो गारंटी आपको दे ही रहे हैं कि आपको इतना तो मिलना
इतना
ही
देंगे।
इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की जो बात कही उसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करिएगा।
यही महंगाई रहा था, देखिए आम आदमी के लिए उसको हम लोग तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं कि CPI IW यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, इसके आधार पर यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको साल में दो बार महंगाई भत्ता मिलता है। एक पहली किस्त होती है वो पहली जनवरी से प्रभावी होती है और दूसरी किस्त जो होती है वो पहली जुलाई से प्रभावित होती है। उसका आकलन कैसे किया जाता है वो सीपीआई आईडब्ल्यू पे होता है। इसी को हम अगर बिल्कुल तकनीकी भाषा में कहें तो ये कहते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। आम बोलचाल की भाषा में अगर हम इसको कहें तो महंगाई भत्ता जो सरकारी कर्मचारी हैं काम में लगे हुए हैं और अगर सेवानिवृत्त हो जाए तो उनको महंगाई राहत मिलती है। तो अब ये बात कही गई कि महंगाई राहत उनको भी मिलेगा, यानी कि समय समय पर साल में जो दो बार फैसला किया जाता है, अमूमन पहली किस्त का जो फैसला होता है वो मार्च में होता है होली के ठीक पहले और दूसरी किस्त का फैसला दुर्गा पूजा के ठीक पहले होता है, तो उसका फायदा कर्मचारियों को भी मिलेगा महंगाई राहत के तौर पर। इसी को इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन कहते हैं।
शिशिर जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर वास्तविकता को हम समझें तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जिसका आपने जिक्र किया था, क्या हम कह सकते हैं कि उसको अपनी प्रभावशीलता दिखाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है अभी तक पूरी तरह से?
नेशनल पेंशन सिस्टम पहली जनवरी 2004 से लागू है और अगर मैं संख्या की बात करूं जो सरकार ने संख्या दी है कि 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी जो हैं, यानी कि उतने लोग हैं जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम में आ चुके हैं। लेकिन नेशनल पेंशन सिस्टम में अगर रिटर्न की बात करेंगे, जिन्होंने पैसा लगाया जो पिछले 23 साल 2004 से लेकर के 2024 के बीच में 20 साल के दरमियान रिटर्न जो है वो 9.5% तक गया है, तो एनपीएस के साथ दिक्कत यही हुई कि लोगों को जितना समय चाहिए था अपने कॉर्पस को बिल्ड करने के लिए, अगर उनका उतना समय नहीं हो पाया तो उनके पेंशन पर असर पड़ेगा। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि एनपीएस में जो लोग शामिल हुए हैं उनका रिटायरमेंट आप कहिएगा 2030 के बाद आएगा, तो असली परीक्षा तब होगी एनपीएस की जब 2030 के बाद उनके पेंशन की शुरुआत होगी, तो वो हमको ध्यान में रखना होगा।
थोड़ा सा राज्यों की तरफ अगर हम जाएं तो भारत सरकार ने निश्चित लाभ चुनने वाले राज्यों पर समान राजकोषीय बाध्यता यानी कि फिस्कल डिस्क्लोजर की बात कही है और उन सरकारों को पेंशन देनदारियों को स्थिरता देने का एक मार्ग भी सुझाया है कि आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो राज्यों के लिए अगर हम कॉमर्शियल वे में देखें या फिर फाइनेंशियल वे में देखें तो उनके लिए किस तरह का फैसला हो सकता है?
एक चीज इसमें अच्छी बात है कि आपको हर साल प्रावधान करना है। पुरानी पेंशन योजना में या किसी भी पेंशन योजना में, जैसे कुछ राज्य सरकारों ने वापस पेंशन योजना को, पुरानी पेंशन योजना को लिया, उन्होंने भविष्य के ऊपर देनदारी दे दी, क्योंकि जब कोई रिटायर होगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम में जो लोग हैं उनके लिए असली समय 2030 के बाद शुरू होगा जब वो रिटायरमेंट आना शुरू होगा। तो अब अगर अचानक एक राज्य सरकार कहती है कि हम नेशनल पेंशन सिस्टम के बजाय हम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे, तो आप आने वाली पीढ़ी के ऊपर देनदारी दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपको हर महीने एक निश्चित रकम जमा करनी है, तो आपके देनदारी तुरंत से शुरू हो जाएगी। हाँ, कुछ राज्यों के लिए इसमें एक चुनौती हो सकती है, खासतौर पर जिनकी वित्तीय स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रूडेंस लेकर के चलें, एक विवेकपूर्ण जिसको राजकोषीय नीति बना करके चलें, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कुछ राज्यों के ऊपर थोड़े समय के लिए इसका असर देखने को मिल सकता है।
शिशिर जी, बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस प्रणाली को हम देखें तो इक्विटी में काफी पैसा आने की उम्मीद अब बढ़ सकती है इस चीज में, ऐसा जो बाजार के एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं। मैं आपसे अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहता हूं कि इसमें कितनी भी बात में सच्चाई हो सकती है।
मैंने आपसे बताया कि नेशनल पेंशन सिस्टम में भी विकल्प था कि पैसा जाएगा, और अब सच्चाई ये है कि अगर 24% से घट करके 20% हो जा रहा है तो यानी कि आपके लिए बाजार के लिए तो पैसा कम उपलब्ध होगा ना। इसीलिए ये कहना कि ज्यादा निवेश आएगा शायद थोड़ी जल्दबाजी है। हमें एक बात और भी यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे वेतन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि कहने को 20% होगा लेकिन रकम बड़ी होगी, तो उस आधार पे उस समय में आपको ज्यादा पैसे का उपलब्धता बाजार के लिए हो सकती है। लेकिन उन्हीं के लिए होगा जो 25% या 50% का विकल्प अपनाते हैं, जो 15% का है वो अभी भी चल रहा है, तो एक झटके में बहुत कुछ पैसा बाजार में आ जाएगा, मुझे इसमें संदेह है।
एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा, कोई भी सरकारी कर्मचारी है यदि दुर्भाग्य से उसका निधन रिटायरमेंट से काफी पहले हो जाता है तो उस स्थिति में जब ये सारी चीजें होंगी तो उसको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा?
देखिए, अगर उनका निधन हो जाता है जब वो काम में ही होते हैं, कार्य में ही होते हैं, तो जाहिर सी बात है कंपनसेट एम्प्लॉयमेंट होता है जो उनके स्पाउस को मिलता है। अब अगर उनका निधन हो जाता है सेवानिवृत्ति के बाद तो फैमिली पेंशन जो है जो कि 60%, और वो फैमिली में जैसा मैंने आपसे कहा कि परिभाषा उसमें ये है कि पति पत्नी या दिव्यांग बच्चे हैं। अब अगर मान लीजिए कि आप वीआरएस लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लेते हैं 60 वर्ष के बहुत पहले, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा उस पेंशन व्यवस्था को अपनाने के लिए जब आपकी उम्र 60 वर्ष की हो जाएगी तब।
जी शिशिर जी, बहुत ही आसानी से आपने इन तमाम बातों को समझाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे एकीकृत पेंशन योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।